मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 11 जून 2018 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस लाइफ मैनेजमेंट में मैं आपको किसी के जीवन का एक छोटा सा किस्सा सुनाने जा रहा हूं, लिखा हुआ। आज भी मैं पढ़ूंगा क्योंकि जो इसकी भाषा है वह इतनी प्रभावशाली है और अंदर तक उतर जाने वाली है कि मैं इस भाषा की हत्या अपनी भाषा के जरिए नहीं करना चाह रहा हूं। इसीलिए मैं आपको पुस्तक का एक अंश ही पढ़कर सुनाने जा रहा हूं और यह जो अंश है फ्रेंड्स, ये ग्राहम बेल के जीवन के बारे में है। ग्राहम बेल जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया, इसका मेरा उद्देश्य क्या है मैं आपको स्पष्ट कर दूं पहले। और मित्रों, वह यह कि सामान्यतया इतिहास के बारे में हम क्या सोचते हैं, दो बातें होती हैं। पहला तो यह कि इतिहास राजा महाराजाओं के आपस की लड़ाइयों की गाथाएं हैं, ये हम सोचते हैं, जो गलत है। इतिहास बेसिकली हमारे बीते हुए समय का आईना है, समय का आईना है ना, मिरर ऑफ द टाइम। यानी कि उस समय चाहे फिर वो राजनीति हो, जीवन हो, कुछ भी हो, धर्म हो, समाज हो, अर्थव्यवस्था हो, उनका आईना होता है इतिहास। और दूसरी बात, इतिहास के बारे में सामान्य रूप से ये कही जाती है, गड़े मुर्दे क्या उखाड़ना, गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या मिलेगा। मुझे लगता है कि यह धारणा बहुत गलत है क्योंकि वो हमारे अपने जीवन का बीता हुआ वक्त है, वो हमारे लिए एक बड़ी खूबसूरत लाइब्रेरी है और वो लाइब्रेरी ऐसी है जो हमारे अपने लोगों ने जी जी करके तैयार की है। तो आपको नहीं लगता कि उस लाइब्रेरी से हम कितनी ज्यादा चीजें सीख सकते हैं और वो केवल विचारों का जमावड़ा नहीं है, उन स्थितियों को जिया गया है, भोगा गया है, यानी कि वो तो प्रैक्टिकल है। इतिहास में जो भी चीजें हैं वो प्रैक्टिकल हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर वहां से हम चीजें ले तो अपने आज की जिंदगी के लिए कितनी सारी बातें सीख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इसी बात को ध्यान में रखकर आपके सामने एक छोटा सा अंश पेश कर रहा हूं। आप इस अंश से क्या सीखेंगे ये पूरी तरह से आपके ऊपर है और मैं चाहूंगा कि आप लोगों ने क्या क्या सीखा अपनी अपनी तरफ से जरा सा मुझे अगर बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं समझ सकूंगा कि मुझे इस तरह की जो मैंने शुरुआत की है वो शुरू इसे करते ही रहना चाहिए या किसी स्टेज पर जाकर बंद कर देना चाहिए। और फिर मुझे ये भी लगेगा कि हाँ, आप लोगों में धीरे धीरे मैच्योरिटी डेवलप हो रही है, वह गहरी दृष्टि पैदा हो रही है, इनफैक्ट जो जीवन को समझने में आपकी मदद करेगी और यही समझ मुझे भी इस लाइफ मैनेजमेंट के लिए प्रोत्साहित करेगी कि नहीं, इसमें मैं जो वक्त दे रहा हूं और आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं तो वो वक्त फलीभूत हो रहा है और मेरी कोशिश का भी लाभ आप सबको मिल रहा है। दोस्तों, इसमें दो नाम आएंगे, एक नाम आएगा ग्राहम बेल, तो बेल नाम आएगा ही, वो ग्राहम बेल का नाम है और ये घटना उस समय की है जब उनकी उम्र मुश्किल से 26-27 साल की थी, 28 साल की रही होगी। और बेसिकली कैलिफोर्निया जो अमेरिका का एक शहर है और वहां गर्मी के दिनों में एक एग्जीबिशन लगा करती थी, इंटरनेशनल सेंटिनियल एग्जीबिशन, शतवर्षीय प्रदर्शनी, अंतर्राष्ट्रीय शतवर्षीय प्रदर्शनी। तो जो लोग भी अपने आविष्कार वगैरह करते थे तो उस प्रदर्शनी में लोग एग्जीबिट करते थे, उसे दिखाते थे और फिर लोग आते थे और उन चीजों को देखते थे कि किन किन चीजों के आविष्कार हुए हैं। तो इसमें जो ग्राहम बेल साहब हैं वहीं उन्होंने अपना जो भी आविष्कार किया है जिसे हम टेलीफोन के नाम से जानते हैं उसे एक छोटी सी मेज पर लगा करके और चुपचाप खड़े हैं, ये दृश्य है। और इसमें एक नाम आएगा ह्यूबर्ड। बेसिकली ह्यूबर्ड एक व्यापारी थे और उनकी बेटी जो थी वो बहरी थी और जो हमारे ग्राहम बेल साहब थे उन्होंने अपने जो कैरियर की शुरुआत की थी वो बोस्टन के एक बहरों जो डीफ होते हैं उनके स्कूल में अध्यापक के रूप में की थी, वहां वो उसे पढ़ाते थे। और जो ह्यूबर्ड महोदय हैं उनकी बेटी जो बहरी थी उनका नाम था मैबेल ह्यूबर्ड, मैबेल, राइट। ये थोड़ी सी मैं आपको पृष्ठभूमि बता रहा हूं और मैबेल ह्यूबर्ड से ही फिर ग्राहम बेल ने शादी भी की थी, राइट। तो ह्यूबर्ड साहब जो है आप कह लीजिए कि उनके भावी ससुर उनको इस तरह के कामों में मदद करते रहते थे, जो अब आर्थिक जरूरत पड़ती थी तब उसे सपोर्ट करते रहते थे। तो ये हैं ह्यूबर्ट महोदय, जो ग्राहम बेल के भावी ससुर हैं। अब मैं अंश को मित्रों पढ़ रहा हूं। खड़े हैं बेल साहब अपनी छोटी सी मेज में, एक छोटी सी जगह पर अपने टेलीफोन के यंत्र को लेकर के। उस समय की कल्पना कीजिए, है ना, आज से लगभग आप 150 साल पीछे चले जाइए, 125 साल पीछे चले जाइए। मित्रों अब आप देखिए कि क्या होता है, ये 1875 की घटना है। खड़े हैं, अब मैं शुरू करता हूं, लेकिन किसी ने भी इसमें कोई खास दिलचस्पी लेने की कोशिश नहीं की। बेशुमार भीड़ थी, लोग उस छोटी मेज के पास से गुजरते, लेकिन शायद ही कोई उधर देखने की तकलीफ फरमाता, जिधर एक छोटी मेज पर कुछ यंत्र सजे थे और एक लंबा तगड़ा गलमुच्छों वाला गोरा नौजवान बार बार बेचैनी से अपनी उंगलियां रेशमी टोप पर फेरता, टुकर टुकर ताकता रहता था। दो और दिन ऐसे ही निकल गए, मगर कुछ भी नहीं हुआ। बेल ने निश्चय किया कि वह अपने घर बोस्टन लौट जाएगा और साथ में अपना टेलीफोन भी ले जाएगा। ह्यूबर्ट महोदय ने जोर दिया कि कम से कम रविवार तक तो वह रुके ही। अनेक गणमान्य अतिथि प्रदर्शनी को देखने के लिए आने वाले थे, जिनमें ब्राजील के महामहिम सम्राट और सम्राज्ञी के साथ साथ अमरीकी वैज्ञानिक प्रोफेसर हेनरी और ब्रिटिश वैज्ञानिक सर विलियम थॉम्सन भी शामिल थे, जिन्होंने बाद में लॉर्ड केल्विन के नाम से रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था। इसके अलावा प्रदर्शनी के निर्णायक भी सभी मंडपों में आकर नई खोजों की जांच करने वाले थे। लेकिन वह रविवार भी प्रदर्शनी के दिनों की तरह खाली बीता जा रहा था। शाम के कोई 7 बजे होंगे कि आखिरकार निर्णायक समिति टेलीफोन वाली उस छोटी मेज की तरफ आ पहुंची। दिन भर की गर्मी के कारण वे सब पस्त हो रहे थे। उनमें से एक निर्णायक वही मेज पर बैठ गया और हेडफोन उठा लिया और देखने लगा, मगर बेल बड़े उत्साह से जो बोलता चला जा रहा था उस पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। समिति के शेष सदस्य पहले ही पड़ोस के अगले स्टॉल पर चले गए थे। मित्रों ध्यान से सुनिएगा, छोटी छोटी बातों पर गौर कीजिएगा, तभी आप इसके बड़े अर्थ निकाल पाएंगे, अदरवाइज ये किस्से कहानी की तरह खत्म हो जाएगा, जो सामान्यतया हम पढ़ने में करते हैं। और खासकर जब इतिहास और बायोग्राफी पढ़ते हैं तब तो उसे हम कहानी ही मान करके चलते हैं, बीती हुई एक सच्ची कहानी। अब मैं अंश पढ़ रहा हूं। इसी समय ब्राजील के बादशाह पिड्रो द्वितीय का दल उस हाल में घुसा। डॉम पिड्रो जल्दी जल्दी एक मेज से दूसरी मेज पर पहुंचते गए। अचानक उसने अपना एक हाथ मिलाने की मुद्रा में बाहर निकाला और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की ओर बढ़ा। प्रिय प्रोफेसर, तुमसे दोबारा मिलकर बड़ी खुशी हुई। एक क्षण के लिए बेल स्तब्ध रह गया। उसे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि इससे पहले कभी भी किसी सम्राट से वह मिल चुका है। तभी एक स्मृति उसके मन में कौंधी। कुछ साल पहले एक दक्षिण अमरीकी रईस बोस्टन यूनिवर्सिटी में बेल की बोलने की क्रिया से संबंधित कक्षा में आया था। तब आगंतुक ने अपना नाम कांते द एलेंतारा बताया था। अब बेल को पता चला कि वह तो खुद बादशाही था जो अज्ञात रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर निकला होगा। फौरन ही छोटी मेज के आसपास का वातावरण बदल गया। डॉम पेड्रो देखना चाहता था कि प्रोफेसर ने क्या आविष्कार किया था। अभिग्राही नलियों में से एक इसके हाथ में दे दी गई और कहा गया कि इसको कान से लगा लें। हॉल के दूसरे छोर पर बेल ने दूसरे टेलीफोन को जल्दी जल्दी में डाले गए तार से जोड़ दिया। फिर वह उस यंत्र की एक छोटी सी तुरही में बोला, महामहिम क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं प्रोफेसर बेल बोल रहा हूं। बादशाह मेज के पास रखी अपनी कुर्सी पर उछल पड़ा और हाथ में लगी नली को बड़े ताज्जुब से घूरता हुआ बोला, हे भगवान! वह चिल्लाया, ये तो बोलता है। इसी क्षण से वह टेलीफोन प्रदर्शनी की सबसे सनसनीखेज चीज बन गया। प्रोफेसर हेनरी ने घंटों तक इसकी जांच पड़ताल की और प्रदर्शनी के अन्य निर्णायकों से पूछा कि इसके बारे में उनके क्या विचार हैं। यह टेलीफोन बाद में उसने रिपोर्ट में लिखा, निर्णायकों के विचार में टेलीग्राफ संबंधी अब तक की उपलब्धियों में सबसे बड़ा चमत्कार है। यह खोज अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और इसमें सुधारों की बड़ी गुंजाइश है। मित्रों, मैं अब इसे यहीं समाप्त करता हूं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट भाग है, पोर्शन, वो यहीं यहीं तक है। आगे तो फिर ये लंबा चैप्टर है। फ्रेंड्स, तो ये मैंने छोटा सा अंश आप लोगों को पढ़कर सुनाया है, और आगे मैं अब कुछ भी नहीं बोलने जा रहा हूं, अपनी बात को यहीं खत्म कर रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप इस अंश को बार बार सुनेंगे, कम से कम 3-4 बार तो सुनेंगे ही, और उसकी बारीकियों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, उसके महीन धागों को देखेंगे, और फिर आप देखें कि इसमें से जीवन के क्या क्या सूत्र निकल रहे हैं। राइट? तो दोस्तों, अब आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।